नारीत्व का अभिशाप विषय का शेष अंश पृष्ठ 39। इस विषय में उसके क्यों का उत्तर देने को गृहस्वामी बाध्य नहीं, समाज बाध्य नहीं और धर्म भी बाध्य नहीं। यदि स्त्री ऐसे घर को, ऐसी अस्थाई स्थिति को संतोषजनक न समझे तो उसे इन सबके निकट दोषी होना पड़ेगा। उसे अपने विषय में कुछ सोचने समझने का अधिकार नहीं, क्योंकि उसका जीवन वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना में से जो पिता का बोझ हल्का करने में समर्थ हो गया, उसी को जन्म जन्मांतर के लिए निवेदित हो गया। चाहे वह स्वर्ण पिंजर की बंदिनी हो चाहे लौह पिंजर की, परंतु बंदिनी तो वह है ही, और ऐसी ही जिसके निकट स्वतंत्रता का विचार तक पाप कहा जाएगा। स्त्री न स्वातंत्र्यम् अर्हति, शास्त्र ने कहा है ना, जिसके चरणों में उसका जीवन निवेदित है। यदि वह उसके संदूक में बंद बालक की गुड़िया के समान संसार की दृष्टि से, सूर्य की धूप और पवन के स्पर्श से बचाकर रखना चाहता है, तो भी सब इस कार्य के लिए उसे साधुवाद ही देना उचित समझेंगे। उनके विचार में नारी मानवी नहीं, देवी है, और देवताओं को मनुष्य के लिए आवश्यक सुविधाओं का करना ही क्या है? नारी के देवत्व की कैसी विडंबना है? पैराग्राफ चेंज। यदि दुर्भाग्य से स्त्री के मस्तक का सिंदूर धुल गया, तब तो उसके लिए संसार ही नष्ट हो गया। यह ऐसा अपराध है जिसके कारण उसे मृत्यु दंड से भी भीषणतर दंड भोगते हुए तिल तिल घुलकर जीवन के शेष युग न जाने वाले क्षण व्यतीत करने होते हैं। पृष्ठ 140। ऐसी परिस्थिति में यदि दीर्घकाल तक गुड़िया बनी रहने वाली स्त्री मातृत्व के उत्तरदायित्व से युक्त होती है, तो उसे अपने अभिशापमय जीवन के साथ अनेक दुधमुंहे बालकों को लेकर ऐसे अंधकार में मार्ग ढूंढना पड़ता है जिसमें प्रत्येक यात्री दूसरे को भ्रांति में डाल देना अपराध ही नहीं समझता। यदि वह अबोध बालिका है, तो भी समाज और परिवार सनातन नियम के पालन में अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ प्रमाणित करने में पीछे न रहेंगे। जिन मानवीय दुर्बलताओं को वे स्वयं अविरत संयम और अटूट साधना में भी जीवन के अंतिम क्षणों तक न जीत सकेंगे, उन्हीं दुर्बलताओं को किसी भूली हुई अस्पष्ट सुधि द्वारा जीत लेने का आदेश वे उन अबोध बालिकाओं को दे डालेंगे जो जीवन से अपरिचित हैं। उनकी आज्ञा है, उनके शास्त्रों की आज्ञा है, और कदाचित उनके निर्मम ईश्वर की भी आज्ञा है कि वे जीवन की प्रथम अंगड़ाई को अंतिम प्राणायाम में परिवर्तित कर दे, आशा की पहली सुनहली किरण को विषाद के निविड़ अंधकार में समाहित कर दे और सुख के मधुर पुलक को आंसुओं में बहा डाले। इस विराग की साधना के लिए उन्हें अनंत प्रलोभनों से भरे हुए, वैभव से सजे हुए और बधिकों से पूर्ण स्थान के अतिरिक्त कोई एकांत स्थान भी मिल नहीं पाता। पैराग्राफ चेंज। इतने प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों को देकर भी स्त्री के दुर्भाग्य को संतोष नहीं हुआ। इसका प्रमाण आज की नारी अपहरण की समस्या है। नारी जीवन की उस करुण कहानी का इससे घोरतर उपसंहार और हो भी क्या सकता है। जिस रूप से जिन साधनों के द्वारा इस लोमहर्षक कार्य का संपादन हो रहा है उसे सुनकर निर्जीव भी जाग जाते, परंतु हमारी निद्रा तो मृत्यु की महानिद्रा को भी जला देने वाली हो गई है। बिना सर्वनाश के उसका टूटना संभव नहीं। अपहृत हिंदू स्त्रियों में कुछ तो ऐसी रहती हैं जिनका जीवन गृह और समाज की अमानुषिक यातनाओं से इतना दुर्वह हो जाता है कि छुटकारे का कोई भी द्वार उन्हें बुरा नहीं लगता और वे बहकावे में आकर एक नरक से बचने के लिए दूसरे नरक की शरण लेने को उद्धत हो जाती हैं। उनका आहत हृदय इतना चेतना शून्य हो उठता है कि उसमें मान अपमान का अनुभव करने की शक्ति ही नहीं रह जाती। पृष्ठ 41। उन्हें तो घायल के समान क्षण भर के लिए ऐसा स्थान चाहिए जहां उनके शीर्ण शरीर को कुछ विश्राम मिल सके। अतः सहानुभूति के, चाहे वह सच्ची हो या झूठी, दो शब्द उन्हें बेदाम खरीद सकते हैं। यदि ऐसे हृदयों के समय पर हमी से आश्वासन तथा सांत्वना मिल सकती, यदि हमी इन्हें मनुष्य समझ सकते, वर्षों से जम जम कर इन्हें जीवन को पाषाण बनाने वाले आंसुओं की करुण कहानी सुन लेते और इनके असहा दुख भार को अपनी सहानुभूति से हल्का करने का प्रयत्न कर सकते, तो आज का इतिहास कुछ और ही हो जाता। परंतु हम पशु पक्षियों को, पाषाण को अपनी सहानुभूति बांट सकते हैं। नारी को निर्मम आदेश के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे पाते। देवता की भूख हम समझते हैं, परंतु मानवी की नहीं। इसके अतिरिक्त ऐसी महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है जिनका बलात् अपहरण किए जाने पर भी खोज के लिए विशेष प्रयत्न नहीं होता। पत्रों में प्रकाशित ऐसी घटनाओं की संख्या भी कम नहीं। अप्रकाशित अपहरण कहानियों के विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। इन अभागिनों के उद्धार के लिए जो उपाय किया जा रहा है वह तो बहुत सराहनीय नहीं जान पड़ता। जिस समाज में ऐसी घटनाएं 12-13 की संख्या में प्रतिदिन घटित होती हो, उसके युवकों को सुख की नींद आना संसार का 8वां आश्चर्य है। पैराग्राफ चेंज। कुछ अधिक तर्कशील पुरुषों का कहना है कि स्त्रियों को स्वयं अपनी रक्षा करने से कौन रोकता है? इस कथन पर हंसना चाहिए या रोना, यह नहीं कहा जा सकता। युगों की कठोर यातना और निर्मम दासत्व ने स्त्रियों को अपनापन भी भुला देने पर विवश न किया होता, तो क्या आज ये अपने सम्मान की रक्षा में समर्थ न हो सकती? आज विवश पशु के समान इन्हें हाक ले जाना इसलिए सहज है कि ये पशुओं की श्रेणी में बैठा दी गई हैं और ज्ञान सुनने के, कर्म के अतिरिक्त और किसी वस्तु का इन्हें बोध नहीं है। आज भी इनमें जो मनुष्य कहलाने की अधिकारी है उन्हें अपनी रक्षा के लिए शस्त्र या सैनिक नहीं रखने पड़ते। पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक उनकी गति अबाध है। उनके जीवन में साहस की शक्ति और आत्मसम्मान की गरिमा, प्राणों में आशा और सुनहली कल्पना है। परंतु ऐसी सजीव नारियां, पृष्ठ 42, उंगलियों पर गिनने योग्य हैं। इच्छा प्रयत्न से अन्य बहनें भी अपनी रक्षा में स्वयं समर्थ हो सकती हैं, इसमें संदेह नहीं, परंतु इस इच्छा और प्रयत्न का जन्म उनके हृदय में सहज ही न हो सकेगा। वे तो आत्मनिर्भरता भूल ही चुकी हैं, फिर उसकी उपयोगिता कैसे समझ सकेंगी? उनके जीवन को सुव्यवस्थित करने तथा उन्हें मनुष्यता की परिधि में लौटा लाने का प्रयत्न कुछ विदुषी बहनें तथा पुरुष समाज ही कर सकता है। परंतु यह न भूलना चाहिए कि जिस समय घर में आग लगती है, उसी समय कुआं खोदने वाले को राख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इसी से आपत्ति का धर्म विपत्ति के धर्म से भिन्न कहा गया है। इस समय आवश्यकता है एक ऐसे देशव्यापी आंदोलन की जो सबको सजग कर दे, उन्हें इस दिशा में प्रयत्नशीलता दे और नारी की वेदना का यथार्थ अनुभव करने के लिए उनके हृदय को संवेदनशील बना दे, जिससे मनुष्य जाति के कलंक के समान लगने वाले इन अत्याचारों का तुरंत अंत हो जाए। अन्यथा नारी के लिए नारीत्व तो अभिशाप तो है ही। 1933 नारीत्व तो का अभिशाप, विषय समाप्त।